हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद पहला अध्याय श्लोक संख्या 18 एंड 19। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय, तत्थाम वृंदावनम रम्याकाचिदुपासना व्रजवधु वैकीनया कल्पिता, श्रीमद्भागवतम प्रमाणममालम प्रेम पुमर्थो महा, श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो नापर। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यत्वंदनं यत् श्रवणं यदर्हणं, लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषं, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरात होणाय द्रुपुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवनाक सादया, ये नीच पापा यदपाशयाशया, शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद प्रथम अध्याय जिसका शीर्षक है ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को म्रियमाण व्यक्ति जिसकी मृत्यु एकदम निकट आ गई है उसके विषय में बता रहे हैं कि उसे ऐसा क्या करना चाहिए कि उसका जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाए, उसे भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले उन्होंने श्लोक नंबर 15 से स्टार्ट किया, अंतकाले तो पुरुष आगते गत साध्वसा। डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मृत्यु तो आनी है, उसकी तैयारी करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? छिंद्याद संग शस्त्रेण स्प्रियाम देहेनु ये चतम। अपने जो देह के साथ सुख पाने की जो इच्छा है उसको सबसे पहले त्यागना है और उसके साथ साथ देह से जो संबंधी हैं उनके साथ आसक्ति को समाप्त करना है। और आसक्ति समाप्त करके घर में पड़े रहने की जरूरत नहीं है, निकल जाओ किसी पुण्य तीर्थ स्थान में। गृहात प्रव्रजितो धीर पुण्य तीर्थ जलाप्लुता, और वहां पर पुण्य तीर्थ में जाकर स्नान करो। शुचो विवक्त आसीनो और साफ सुथरे हृदय के साथ एक आसीन विधिवत कल्पितासन एक आसन बनाओ। तो यहाँ पर यम नियम और आसन हमने पढ़ा, उसके बाद प्राणायाम के श्वासों को किस तरह से मन को जीतना है और श्वासों को वश में करना है। मन को वश में करके जैसे अभ्यसेन मनसा शुद्धिम अभ्यास करना है, भगवान के पवित्र नाम का जप करने का। त्रिविद ब्रह्मा अक्षर परम, तीन जो ब्रह्मा अक्षर है यानी ओंकार का उच्चारण करना है। मनो यच्छे जित श्वास हो, मन को वश में करना है, श्वास को जीतना है। और ब्रह्म बीजम अविस्मरम, ब्रह्म बीज को यानी भगवान के नाम को एक क्षण के लिए भी भूलना नहीं है। और इसके बाद प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। प्रति का मतलब होता है हटाना, आहार मतलब इंद्रियों को उसके विषयों से हटाने को कहते हैं प्रत्याहार। तो उसके विषय में आज वो बताएंगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नियच्छेद विषये भोक्षान मनसा बुद्धि सारथी मनः कर्म विराक्षिप्तम् शुभार्थे धारयेत् धिया। नियच्छेत् विषये भोक्षान् मनसा बुद्धिसारथी मनः कर्म विराक्षिप्तम् शुभार्थे धारयेत् धिया। मनः कर्म विराक्षिप्तम् मनः कर्म विराक्षिप्तम् शुभार्थे धारयेत् धिया। नियच्छेत् विषये भोक्षान् मनसा बुद्धिसारथी मनः कर्म विराक्षिप्तम् शुभार्थे धारयेत् धिया। नियच्छेद् विषये भोक्षान् मनसा बुद्धिसारथी मनः कर्म विराक्षिप्तम् शुभार्थे धारयेत् धिया। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं इतना करने के बाद नियच्छेद का मतलब होता है खींच लो। किसको? विषयेभ्य विषयों से, अक्षान का मतलब होता है इंद्रियों को। मनसा बुद्धि सारथी, मन से और बुद्धि को सारथी बनाकर। वास्तव में भक्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इंद्रियां जो हैं वो सदैव अपने विषयों की ओर भागती हैं। जैसे मूंज और घोड़े होते हैं ना, वो सदैव अपने सारथी के लगाम को छुड़ा कर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो कुशल सारथी होता है वो ان گھوڑوں کو بھی نا ان بھاگنے نہیں دیتا بلکہ ان کو اس طرح سے ٹریٹ کرتا ہے کہ وہ سوابھاوک جو راستہ ہے اس پر چلنے کے لیے ویوش ہو جاتے ہیں. تو یدی ہم اپنی اندریوں کو من جیسے اچھنکرن, کیونکہ من کو کبھی بھی کنٹرول نہیں کرا جا سکتا ہے, من تو سدیو وچلت رہتا ہے, من سدیو گھومتا رہتا ہے, من تو جاگتے ہوئے چھوڑو سوپن میں بھی سدیو گھومتا رہتا ہے, اور جدھر بھی جائے بھلے من سنسار کی کسی بھی وستو کو پراپت کرے, کسی بھی وستو کے وشے میں سوچے, وہ ہر وستو آپ کے لیے اشبھ ہے. تو یہاں پر کیونکہ بھوتک وستو مایا ہے اور من مایا کی اور آکرشت ہوتا ہے تو اس کی کارن ہماری ادھوگتی ہوتی ہے. تو یہاں پر شکدیو گوسوامی بہت ہی مہتوپورن بات کر رہے ہیں. منہ کرما بھیرا کشپتم, منہ کرما بھیرا, کرما بھی من سکام کرموں سے آکشپتم, لین رہ کر شبھارتھم. شبھارتھ مطلب من کو کچھ ایسے کاریہ دینے ہیں شبھ آرتھ, ارتھ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس سے ایک شبھ وشے پراپت ہو. ارتھ مطلب من کو کچھ ایسی وستو دی جائے جو واستو میں اس کا کلیان کر سکے. من کو سوچنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے, اور من کو یدی بھوتک کسی بھی وستو میں لگایا جائے گا وہ کبھی بھی شبھ نہیں ہو سکتا ہے. ہر ایک وستو جس کے وشے میں من چنتن کرتا ہے تو وہ جیو کے لیے اشبھ ہے. اسی لیے بھگوان کہتے ہیں من منا بھو, من مجھے دے دو, من کے اندر میرے اترکت یدی کوئی آ گیا تو تم پھنسو گے. تو یہ من جو ہے جس کا بھی چنتن کرتا ہے واستو میں اس کے دوارا ملین ہو جاتا ہے. ہردے کسی بھی بھوتک وستو کا چنتن کر کے ملین ہو جاتا ہے, اس لیے کہتے ہیں شبھارتھ. اور بھگوان کے سوروپ کا جب وہ چنتن کرتا ہے تو ہردے شدھ ہوتا ہے, کیونکہ بھگوان کا جو سوروپ ہے وہ دیویہ ہے, اپراکرتک ہے اور اتینت ہی سندر ہے. اس لیے من کو بھوتک وستوں کی آکرشن سے ہٹا کر بھگوان کے اندر اس کو لگانا ہے. شبھارتھ دھارا یہ دیا مطلب پورنتیا شبھ کی اور من کو ایکترت کرنا ہے. اور یہ کیسے سمبھو ہے؟ جب بدھی کو سارتھی بنائیں گے. بدھی ایک کشل سارتھی ہے اور وہ من کو اوشیہ وش میں کر سکتی ہے یدی بدھی کے ہاتھ میں لگام دی جائے. واستو میں بدھی کی سہایتا سے جیو کو وچار کرنا چاہیے, کیونکہ یدی گیان ہوگا تو بدھی اوشیہ یہ وچار کرے گی کہ اندری وشیوں سے سدیو, اندری وشیوں کے آکرشن سے سدیو جیو کا سرواناش ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ دھارنا ہے, دھارنا کا مطلب ہوتا ہے بدھی کے دوارا پہلے پرتیاہار بتایا کہ اندریوں کو روکنا ہے, بدھی کے دوارا اندریوں کو وشیوں کی اور جانے سے روکنا ہے. اور اس کے بعد دھارنا مطلب بدھی کے دوارا من کو شبھارتھ میں دھارایت, منہ کرما بھیراکشپتم شوبارتھی دھارت, یعنی اس میں لگانا ہے. پرتیار مطلب ہٹانا ہے, اور دھارت مطلب اس میں دھارن کرنا ہے. کس میں؟ شوبارتھ میں, بھگوان کی چنتن میں اس کو لگانا ہے. اور اس سنسار میں سب سے شبھ وشے کیا ہے؟ بھگوان کا سوروپ. یعنی بدھی کے دوارا من کو اس بات کے لیے بھادیہ کر دیا جائے کہ آپ کو بھگوان کے وشے میں ہی سوچنا ہے, اندریوں کو وشیوں سے ہٹانا ہے. کیونکہ جب تک اندریاں وشیوں کا چنتن کرتی رہیں گی, آنکھ بھوتک وستوؤں کو دیکھتے رہیں گے, کان بھوتک وستوؤں کو ہی شون کرتے رہیں گے, اور جیوہ سے بھوتک وشیوں میں ہی باتیں کی جائیں گی, اور توچہ سے بھوتک وستوؤں کا سپرش کیا جائے گا, اور ناسکا سے بھوتک گند کی ہی آکرشن میں لگے پڑے رہیں گے, تو کبھی بھی من جو ہے وہ آدھیاتمکتا میں ٹکے گا نہیں. اسی لیے من کو बुद्धि के द्वारा वश में करना है और पहले इंद्रियों को प्रतिहार करना है, इंद्रियों को भौतिक विषयों से हटाना है और बुद्धि की सहायता से मन को समझाना है कि ये भौतिक विषय जो है वो हमारा सदैव से सर्वनाश करते हैं। इसलिए मन को ये समझाना है कि वास्तविक जो शुभ होने वाला है वो भगवान के स्वरूप का ध्यान करने से होने वाला है। तो भले ही मन भागता है, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं जब वो बीमार हो जाते हैं तो भी वो चाहते हैं हम आइसक्रीम खाएं, हम ऐसी वस्तु खाएं, तो क्योंकि माँ होती है ना उसकी, तो माँ उसको बताती नहीं बेटा ये वस्तु आपके लिए कभी भी कल्याणकारी नहीं होगी, आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी, आपको अभी टैबलेट खानी चाहिए, दवाई पीनी चाहिए ताकि आप सही हो जाओ। उसी तरह हमारी भी बीमार अवस्था है। वास्तव में मन का काम केवल भगवान के विषय में सोचने, स्मरण करने योग्य केवल भगवान है, लेकिन क्योंकि हम भौतिक भवरोग में लगे हुए हैं इसलिए भौतिक वस्तुओं की ओर ही आकर्षण होता है। लेकिन बुद्धि को उस समझदार माँ की तरह अपने मन को समझाना है कि नहीं, ये भौतिक विषयों के द्वारा अवश्य हमें अधिक पीड़ा को देखना पड़ेगा। इसलिए यदि हम अधिक दुखों से बचना चाहते हैं तो इंद्रियों को भौतिक विषयों से हटाकर मन को भगवान के चिंतन में लगाना होगा। और अंतिम समय में तो ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि एक भी इंद्रिय विषय उस समय स्मरण में आ गया तो हमें अवश्य दुर्गति होगी, अवश्य जन्म मरण के चक्कर में फंसेंगे। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, किसी भी करके मन को भौतिक विषयों से हटाना है। अगर इस समय चूक गए तो फिर न जाने कहां पर वापस से जन्म होगा। इसलिए चेतना, अपने मन को बिल्कुल कृष्ण के अंदर ही लगाना है, भगवान के अंदर, क्योंकि भगवान कहते हैं अंतकाले च माम एव स्मरण। स्मरण करने के लिए उस समय एव मतलब किसी और का स्मरण नहीं होना चाहिए सिवाय कृष्ण के। अनुवाद देखिए, धीरे धीरे जब मन उत्तर उत्तर आध्यात्मिक हो जाए तो उसे इंद्रिय कार्यों से खींच लिया जाए, विलग कर लिया जाए, इससे इंद्रियां बुद्धि द्वारा वशीभूत हो जाएंगी, ये है प्रत्याहार। और इससे भौतिक कार्यकलापों में लीन मन भी भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है और पूर्ण रूप से दिव्य भाव में स्थिर हो सकता है, और ये है धारणा। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति समझा रहे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं प्राणव यानी ओंकार के यांत्रिक उच्चारण के द्वारा तथा श्वास के नियमित नियमन से मन के आध्यात्मिकरण की प्रथम प्रक्रिया यानी विधि प्राणायाम की यौगिक विधि या श्वास को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने की विधि कहलाती है। इस प्राणायाम पद्धति की चरम अवस्था समाधि है, किंतु अनुभव से सिद्ध हो चुका है कि समाधि अवस्था भी भौतिकता में लीन मन को वश में करने में असफल रहती है। भले ही समाधि के स्टेज पे भी यदि कोई पहुंच जाता है तो भी यदि भौतिक इंद्रियां भौतिक कार्य करती रहेंगी तो मन जो है वो वश में नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ महान योगी विश्वामित्र मुनि समाधि अवस्था प्राप्त करके भी इंद्रियों के शिकार हो गए और उन्होंने मेनका के साथ समागम किया। इतिहास इसका साक्षी है। यद्यपि मन संप्रति विषय वासनाओं को सोचना बंद कर देता है, किंतु अवचेतन मन से वह विगत विषय वासनाओं का स्मरण करता है और इस तरह मनुष्य को शत प्रतिशत आत्म साक्षात्कार में लगने से रोक देता है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि मन को यदि चिंतन करने से रोक दिया जाए, यहाँ पर बताया कि मन कर्मा विरक्षिप्तम। अगर मन को सिर्फ और सिर्फ मतलब कोई चिंतन नहीं दिया जाए और उसको भगवान के स्वरूप का भी चिंतन नहीं दिया जाए तो खाली मन होगा ना, तो अवचेतन मन से वह विगत विषय वासनाओं का स्मरण करता रहेगा। फिर वो कुछ न कुछ तो सोचेगा, उसे सोचने के लिए कुछ तो चाहिए, और इस तरह क्या होगा, शत प्रतिशत आत्म साक्षात्कार में लगने से रुकेगा, क्योंकि वो आध्यात्मिकता शून्य को मन नहीं सोचता। मन अवश्य सोचने के लिए उसको कोई स्थूल सोच चाहिए, कोई स्वरूप चाहिए, आंखों को कुछ दृश्य चाहिए, कर्णों को कुछ श्रवण के लिए चाहिए। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे, अतएव सुखदेव गोस्वामी विश्वस्त नीति अपनाने के लिए कहते हैं, और यह है मन को भगवान की सेवा में स्थिर करना। साफ बताए सुखदेव गोस्वामी ने कि शुभार्थे धारये धिया, ऐसा नहीं मन को छोड़ दो कि नहीं मन के द्वारा कुछ नहीं सोचना है भगवान के विषय में। ये एक विश्वस्त नीति है कि यदि मन को कुछ उच्च स्वाद दिया जाएगा, ऊंचा रस, हायर टेस्ट दिया जाएगा, तो वो भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित नहीं होगा। और सबसे सुंदर, सबसे आकर्षित, अगर भौतिक मतलब अगर कुछ ऐसा है जो मन को वास्तव में कैद कर सकता है तो भगवान का स्वरूप है। यदि भगवान के स्वरूप में एक बार मन एकत्रित हो जाए, मन यदि भगवान के स्वरूप में लग जाए तो फिर वो निकल नहीं सकता। ये कृष्ण इतना आकर्षक है कि एक बार यदि किसी को उससे उसके प्रेम का अनुभव हो जाए, भगवान की मधुरता, भगवान के अधर इतने मधुर हैं, भगवान के नयन इतने मधुर हैं, भगवान का पूरा मधुराधिपते, भगवान सिर से नख तक मधुर हैं, भौतिक वस्तुओं में उतना रस हो ही नहीं सकता। तो यदि मन को भगवान के विषय में सोचने के लिए बाध्य कर दिया जाएगा तो मन बहुत ही आनंदित हो जाएगा। ये शुभार्थ दारयत का मतलब है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मन को भगवान की सेवा में स्थिर करना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भी इस प्रत्यक्ष विधि की संस्तुति श्रीमद् भगवत गीता 6.47 में करते हैं। भगवान भगवत गीता में छठे अध्याय में ध्यान योग के विषय में बताते हैं और अंतिम श्लोक में कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना। जो संपूर्ण योगियों में सबसे श्रेष्ठ योगी वो है जो मद्गते नान्तरात्मना, मेरे अंदर जिसकी पूरी चेतना मेरे अंदर है, सदैव मेरे बारे में सोचता है। श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमोमता, जो श्रद्धा के साथ मुझे बजता है। भगवान ने ध्यान में शून्य के ऊपर ध्यान लगाने के लिए नहीं, उसको नहीं सर्वोत्तम कहा है, भगवान ने कहा श्रद्धावान भजते यो माम, भले योग आसन आष्टा योग भी यदि वो करता है तो भी उसे श्रद्धा से मेरा भजन करना चाहिए, मेरे पवित्र नाम का जप करना चाहिए। वास्तव में भक्तों, समस्त साधनाओं में सबसे श्रेष्ठ साधना यही है कि हमें हृदय में भगवान के पवित्र नाम को जप करना है, भगवान के स्वरूप के ऊपर आकर्षण जमाना है। तो इस तरह से नाम जप करेंगे, क्योंकि जब मुख से निकलेगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो डायरेक्ट से चेतना भगवान के स्वरूप के ऊपर जाएगी। तो यही बात यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस तरह आध्यात्मिक रूप से मन के स्वच्छ होने पर मनुष्य को तुरंत श्रवण कीर्तन आदि यानी भक्ति कार्य द्वारा भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाना चाहिए। तो मन को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि बुद्धि के द्वारा मन को ये समझाना चाहिए कि कानों के द्वारा भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए, मुख के द्वारा भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए, हृदय में भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसी से जीव का कल्याण संभव है। यदि सही मार्गदर्शन के अंतर्गत ऐसा किया जाए तो विचलित मन भी निश्चित रूप से प्रगति कर सकता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, शुद्ध वैष्णव का संग यदि होता है सही मार्गदर्शन होता है तो मन भले ही विचलित है। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा कि चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थी बलवत्रणम यस्याहम निग्रहम मन्ये वायु रिवसु दिष्कर। ये वायु की तरह बहुत, इसको भी रोकना बहुत ज्यादा कठिन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं असंशयम महाबाहो मनः दुर्निग्रहम चलम, परंतु भले ही मन को रोकना बहुत ज्यादा कठिन है परंतु अभ्यास कौनतेय वैराग्य चीहते। अभ्यास यदि करेंगे, और अभ्यास क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, भगवान की कथाओं को श्रवण करना है, और इसके साथ साथ इंद्रिय विषयों से वैराग्य, भौतिक वस्तुओं से वैराग्य, यदि ये दो कार्य करेंगे तो मन चाहे कितना भी विचलित होता हो, मन अवश्य कंट्रोल हो जाएगा, निश्चित रूप से प्रगति कर सकेंगे और अपने वास्तविक लक्ष्य यानी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कर सकेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।